This is Brad Milkey of ABC News' Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
My name's Barry. I live right above you. I don't host parties. I host after parties. They're like parties, only louder and nobody goes home. You can see right here I ripped out all the carpeting because it was holding me back with my pogo stick. Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom!
Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
HD Smartcast. You're listening to a Hindustan Times production brought to you by HD Smartcast.
Hello and welcome to On the Record with me, Sunetra Chaudhary. On this edition, I speak with BJP's National General Secretary in charge of Bengal, Kailash Vijayvargiya. My conversation with Kailash Vijayvargiya is just a day after BJP President JP Nadda and his convoy was attacked. The attack took place at the area where Mamata Banerjee's nephew and party MP Abhishek Banerjee are from. In this interview, Kailash Vijayvargiya talks to me about why he believes Chief Minister Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, her nephew and party MP, are responsible for the attack on the BJP president and how Home Minister Amit Shah has asked for a report from state officials and police in charges. It's just a month before elections and election preparations for Bengal start off. I speak with him about BJP's strategy. I also ask him about contentious legislation which the BJP will be pushing in the state.
तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कैलाश सर कि ये जो इस टाइप का जो वायलेंस चुनाव से रिलेटेड ये हम बंगाल में ही क्यों देखते हैं, आपको क्यों लगता है?
देखिए, जहां पर भी कम्युनिस्ट कल्चर रहा है वहां पर हिंसा रही है. त्रिपुरा में देखे वहां पर हिंसा रही, केरल में देखे अब वहां हिंसा रही, और यहाँ पर भी ममता जी जब विपक्ष में थी और यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी तो उनके साथ भी वही व्यवहार हुआ. दुर्भाग्य से वो कुर्सी पर बैठी तो उससे ज्यादा उसी प्रकार का व्यवहार वो करने लगी है. तो ये कम्युनिस्ट कल्चर है विपक्ष को कुचलना, और मुझे लगता है कि इसीलिए देश में कहीं पर भी इस प्रकार ऐसी घटना नहीं होती है जैसे कि बंगाल में होती है, केरल में होती है और त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई है. तो ये उसी का प्रभाव है.
आप बता पाएंगे, अब हम सब ने तो न्यूज रिपोर्ट्स देखे सर, लेकिन आप बता पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या जो कि शायद अभी भी हमें मालूम ना हो?
देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का दो दिन का प्रवास था संगठनात्मक हमारा. हम लोग अभी घर घर संपर्क अभियान चला रहे तो उसकी शुरुआत उन्होंने भवानीपुर से की. भवानीपुर ममता जी का चुनावी क्षेत्र है तो शुरुआत तो वहीं से की थी. तो वहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, पर वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या काफी थी तो वो लोग चले गए. दूसरे दिन डायमंड हार्बर में कार्यक्रम था. डायमंड हार्बर में हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक भी थी, और विशेषकर जो मछुआरे हैं जो कि तूफान के दौरान प्रभावित हुए थे, उनके मकान टूट गए थे. प्रधानमंत्री जी यहाँ देखने आए थे. प्रधानमंत्री जी ने पहले 1,000 करोड़, बाद में 1,200 करोड़ रुपए भिजवाए, पर उन लोगों को पैसा नहीं मिल पाया था. तो उन लोगों के मछुआरों का एक सम्मेलन हमने वहां डायमंड हार्बर में रखा था, पर यह पता नहीं था कि डायमंड हार्बर जाना इस प्रदेश में मनाही है. तो एक दिन पहले ही हमें सूचना मिली कि वहां पर जो अभिषेक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ममता जी की जो पति है जिनको भाई को कहते हैं, तो उनके दो सहायक है बिल्कुल राइट हैंड लेफ्ट हैंड, एक शौकत मुला और एक जहांगीर. उन लोगों ने 10-10 हजार लोगों का दो जगह भोजन बनवा रखा, रात से भोजन बन रहा है और ये पता लगा कि वो आपका रास्ता भी रोकेंगे नड्डा जी का। तो हमने इस बात से वेस्ट बंगाल के गृह सचिव को रात में ईमेल किया, वहाँ के एसपी से बात की, फिर हमारे कोषाध्यक्ष ने सीएस को भी ईमेल किया, गवर्नर साहब को भी बताया, केंद्र सरकार को भी बताया कि ऐसी संभावना लग रही है। तो हमें ऐसा लगा कि जब सबको अवगत करा दे तो कुछ होगा नहीं, पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जिस तरीके से प्राण घातक हमला हुआ है। और चूंकि नड्डा जी की गाड़ी तो बुलेट प्रूफ थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी तो मेरी गाड़ी उन्होंने फोड़ दी। और उसके बाद फिर राहुल जी, माननीय शिव प्रकाश जी, मुकुंदा, सबकी गाड़ियाँ बिल्कुल फोड़ दी। तो हमारे ड्राइवर, हमारी सिक्योरिटी, सबको चोट आई है। और ऐसा भयानक दृश्य अपने जीवन में हमने पहली बार देखा कि कोई दुश्मनों के साथ व्यवहार करे। ऐसा लगा कि कोई अपन अपने देश में नहीं हो, विदेश में आ गए, क्योंकि पुलिस के साथ खड़े होकर गुंडे जिस प्रकार गुंडाई कर रहे थे वह हमारे लिए एकदम नया सीन था। तो किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हो और उसका किसी प्रदेश में इस प्रकार का स्वागत, तो ये बंगाल का कल्चर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे पूरा बंगाल बदनाम हुआ है और बंगाल की बदनामी सारी दुनिया के अंदर हुई है। मैं नहीं समझता कि बंगाल की जनता भी ममता जी को, उनके भतीजे को माफ करेगी। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हम इस घटना से दुखी भी हैं और शर्मिंदा भी हैं।
तो आप क्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी या अभिषेक क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व है, आपका यह कहना है?
100% देखिए, पुलिस गुंडे, आपने वीडियो देखे होंगे, पुलिस के सामने उन्होंने पथराव किया हम पे। हम जरा सा प्रदर्शन करते हैं वो टीयर गैस चला देते हैं, वो कैन चार्ज कर देते हैं, वो पैलेट गन चला देते हैं, पर टीएमसी के लोग वहां गुंडाई कर रहे हैं, कोई सब पुलिस खड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि पुलिस के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है।
सर, मैंने सुना कि अमित शाह जी उन्होंने रिपोर्ट मांगी, उनसे क्या बातचीत हुई, उनका क्या व्यू पॉइंट है इस पे?
अब हमने तो उनको अवगत करा दिया, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे बात की थी और पूरी घटना की जानकारी उनको दे दी है। उन्होंने शायद ऑफिशियली सरकार से रिपोर्ट मांगी होगी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। अभी हमें पता नहीं कि सरकार, गवर्नर साहब ने भी कल डीजी और सीएस को बुलाया था, पर उनका ट्वीट मैंने देखा कि उनसे मिलने के बाद उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए वो। तो गवर्नर साहब भी संतुष्ट नहीं है डीजी और उनकी बातों से।
कैलाश जी, अभी आपको बंगाल को हैंडल करते हुए काफी दिन हो गए हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अब चुनाव के कुछ ही महीने बाकी है, अब भाजपा की स्ट्रैटेजी अब क्या रहेगी? सर
देखिए, हमारी तो सीधी स्ट्रैटेजी है कि हम सीधे तरीके से पोलिंग बूथ पर जाना, मतदाताओं से बात करना, मैन टू मैन संपर्क करना, यही स्ट्रैटेजी हमारी। तो अब हम इनकी हिंसा का जवाब दे सकते हैं, हमारे पास भी ताकत है, पर हमारा डेमोक्रेसी में हिंसा पे विश्वास नहीं है और इसलिए जो इसका जवाब हम अपेक्षा करते हैं कि बंगाल की जनता दे कि हिंसा की राजनीति पसंद है क्या। तो हम तो सीधे जनता के बीच में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे और सरकार किस प्रकार काम कर रही है उसके बारे में सरकार को अवगत कराएंगे।
कैलाश जी, आपने कुछ दिन पहले ही कहा कि जनवरी से आप सीएए के बारे में बंगाल में प्रचार करेंगे, तो लोगों का ये कहना है कि बंगाल को, भाजपा को जब भी कोई चुनाव जीतना है तो वो पोलराइज करती है और इस वजह से सीएए का नाम, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर?
देखिए, सीएए का तो प्रॉमिस है, प्रधानमंत्री जी पिछले लोकसभा के चुनाव में आए थे तो मतलब हमारी उनसे मांग रहे थे, कहा था कि हाँ हम नागरिकता देंगे। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में एक्ट रखा है और जो कानून बना है उसमें हमें नागरिकता देनी है और उसके रूल्स वगैरह बन रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अभी भी नमो शूद्र समाज और मथुरा समाज की मांग है कि हमें नागरिकता मिलना चाहिए और हमारा प्रॉमिस है ये कि हम नागरिकता देंगे। इसको चुनावी ये नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जवाबदारी है कि पड़ोसी देश में जो लोग धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर हमारे देश में आकर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें उन्हें नागरिकता देना ही हमारा दायित्व है। मैं समझता हूँ कि इसको राजनीति के रंग नहीं देखना चाहिए, ये एक हमारे राष्ट्रीय जवाबदारी है कि उन लोगों को हम नागरिकता प्रदान करें।
तो ये जो दिल्ली में जो कह रहे हैं कि ऐसे कोई रूल्स अभी बने नहीं है, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, बंगाल में फिर भी इसकी काफी प्रचार होगी?
नहीं, रूल्स तो बन ही रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, गृह मंत्रालय रूल्स बना रहा है और उससे हमें लगता है कि जनवरी तक हो जाना चाहिए उनके सारी फॉर्मेलिटीज और जनवरी लास्ट तक हम शायद ये नागरिकता की कार्रवाई केंद्र सरकार करी है, मैं अपेक्षा करी हूँ उनसे।
ये हमने देखा सर, आपके पास भाजपा की जो पूरी स्ट्रेंथ तो है, एक तो सारे लेफ्ट के वर्कर्स आपके पास आ गए हैं, बहुत सारे कार्डर्स, और आप लोगों के पास शायद ममता बनर्जी के जो सबसे सीनियर थे वो आपके अब सीनियर नेता है मुकुल रॉय। अब शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ा है, आपकी तरफ आए नहीं है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है। क्या आने वाले दिनों में भाजपा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाजपा के और लोग आएंगे तृणमूल से?
देखिए, तृणमूल में जिस प्रकार से परिवारवाद चला है और ममता जी ने अपने भतीजे को प्रमोट करने का और सुपर पावर बनाने का काम किया, उससे बहुत सारे टीएमसी के वो लोग जो जिन्होंने टीएमसी की स्थापना के साथ बीजेपी के साथ थे वो सब नाराज हैं और वो सब अब अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ठगा हुआ था। तो ऐसा टीएमसी के अंदर भी काफी घुटन से महसूस हो रही नेताओं को।
भाजपा हमेशा सर, हमेशा कांग्रेस को हरा पाई है ये कहते हुए कि वहां पे करप्शन है, लेकिन दीदी का जो इमेज है वो बहुत ही साफ इमेज है, तो भाजपा उनके खिलाफ क्या जी सर, बस ये प्रश्न पूछना था कि भाजपा जो कांग्रेस के खिलाफ बोलती है कि वो करप्शन है, वो दीदी का जो इमेज है ममता बनर्जी का काफी साफ इमेज है, तो आप लोग कैसे अटैक करेंगे, क्या कह के ममता बनर्जी के सरकार
वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि तूफान आया, तूफान में लगभग 2200 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, तो जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको मिला नहीं, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिनके पक्के मकान है उनको मकान टूटने का पैसा दे दिया, पूरी जनता ने देखा, इसी जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है। और उनके भतीजे जिस प्रकार कोयला माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, गोल्ड माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, तो वो तो माफिया के सरगना है, भाई को बिल्कुल माफिया के सरगना है। तो जो हो रहा है वो जनता सब जान रही है, मुझे लगता है हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता इस बात को स्वयं समझ रही है।
फाइनल क्वेश्चन सर, भाजपा एक जो एक पूरे देश में एक जो नए लॉज जो ला रही हैं वो दो चीजें हैं, एक तो काउ प्रोटेक्शन और दूसरा है ये लव जिहाद के खिलाफ, क्या भाजपा ये भी कह रही है कि अगर बंगाल में सरकार आए तो आप वहां भी लाएंगे ये कानून?
देखिए, ऐसा है कि अभी ये बंगाल में विषय आया नहीं, बाकी ये बात सही है कि जहाँ इस प्रकार के कानून की आवश्यकता होगी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कानून लाएगी, हमें लगेगा कि बंगाल में इसकी आवश्यकता है तो लाने में कोई परहेज नहीं इस प्रकार।
कैलाश जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
नमस्कार।
That brings us to the end of this episode of On the Record with Kailash Vijayvargiye. We'll be back again soon with another newsmaker. You can reach out to us on @SunetraC and @HDSmartcast for your feedback and suggestions about who we should speak with next. Till then, goodbye.
This was a Hindustan Times production brought to you by HD Smartcast.
HD Smartcast.